महाबंध पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर 18। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहूणम्। भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकं महाधवलविख्यातं महाबन्धं नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबन्ध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षट्खंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें तृतीय अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है और उसके पांचवें पुस्तक के पृष्ठ संख्या 65 पर हम आ गए 65। यहाँ जघन्य अनुभाग बंध के सन्निकर्ष की बात चल रही है और अभी हम मार्गणाओं में देखते हुए लेशा मार्गणा तक आ गए। कृष्ण लेशा की बात हमने पढ़ी थी, नील और कपोत लेशा की बात चल रही थी, तो नील और कपोत से शुरू करते हैं। नील और कपोत लेशा में 7 कर्मों का भंग नारकियों के समान है, यानी नाम कर्म को छोड़कर। यह नारकियों के समान इसलिए लिया, एक तो नील और कपोत लेशा 1 से 4 गुणस्थान तक होती है, बात एक है। दूसरी बात, जहाँ प्रशस्त कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध अति संकलेश में होता है वो नारकियों में पॉसिबल है, क्योंकि नील और कपोत लेशा वाले जो मनुष्य तिर्यंच है उनमें इतने संकलेश नहीं होंगे। कृष्ण लेशा में तो मनुष्य तिर्यंच को भी लेते और नारकी को भी लेते, यहाँ तो केवल नारकी के वो संकलेश वाले के लिए लेना। और नरक अभी नील लेशा में नरक गति बांधने वाले तो मनुष्य तिर्यंच ही है, तो उसके नरक गति के जघन्य अनुभाग के बंधक जीवों का भंग ओघ के समान है, क्योंकि वो भी मध्यम परिणाम में उसका जघन्य बंधेंगे। तो ओघ में जैसे हमने देखा था नरक गति के साथ वो पंचेन्द्रिय जाति आदि जो वैकृत शरीर वगैरह बनती है तो वो अनंत गुना अधिक बंधेगी उसके जघन्य के साथ, क्योंकि मध्यम परिणाम है। और पंचेन्द्रिय जाति का जघन्य तो संकलेश में होता है, वो यहाँ अनंत गुना होगा। जो अप्रशस्त प्रकृतियां बाकी बनती है, जो मध्यम परिणाम में बनती है ना जघन्य, वो यहाँ जघन्य भी और अजघन्य भी होगी, अस्थिर आदि जो बनती वो। और अप्रशस्त नाम कर्म वगैरह जो अप्रशस्त वर्ण चतुष्क है उपघात, वो अनंत गुना बंधेगी। अब पंचेंद्रिय जाति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव ये सर्व संकलेश वाला नारकी होगा, मनुष्य के इतने संकलेश नहीं होंगे। वो तिर्यंच गति और हुंड संस्थान का नियम से बंद करता है जो अनंत गुना अधिक होता है, क्योंकि तिर्यंच गति और हुंड संस्थान का जघन्य कहाँ होगा? मध्यम परिणाम में। मध्यम परिणाम में लेना है कि अग्निवायु को लेना है? नारकी की नहीं है, नील कपोत लेशा की है। तो नील कपोत लेशा में जघन्य कौन करेगा? तिर्यंच गति। हाँ जरा वो चौथी पुस्तक लेना। हाँ वो सर्व संकलेश नारकी तो हमने तिर्यंच गति के जघन्य के लिए तो मध्यम परिणाम पंचेंद्रिय की हो गई बात, तिर्यंच गति की बात चल रही नील कपोत लेशा में। इनको लेशा में लिखना है ना। कृष्ण हो गई बात यहाँ। नील और कापोत में तीरंज गति गत्यानुपुरी और निज गोत्र साकार जागृत सर्वविशुद्ध अग्नि बादर अग्नि का एक बादर वायु का एक वही कहा ना मैंने उसी को लेना पड़ेगा क्योंकि सातवें नरक का सन्मुख सम्यक के सन्मुख छोड़कर बाकी तो इन्हीं जीवों को लेते हैं क्योंकि नील और कपोत लेशा वाले नारकी है वो तीर्यंच गति का जगन्य मध्यम परिणाम में करेंगे और नील कपोत लेशा वाले अग्नि का एक वायु का एक है वो तीर्यंच गति का जगन्य करेंगे सर्व विशुद्धि में अग्नि का एक वायु का एक बादर अग्नि का। अरे नील लेशा हमारी कंडीशन है होने दो ना पर नील लेशा में सर्व विशुद्ध किसको लेना है हमारा अग्नि का ही कम वायु का ही हमारी प्ररूपणा नहीं है हमारी प्ररूपणा नील लेशा की है अग्नि का एक वायु का एक में अगर हम सर्व विशुद्ध लेंगे तो कारपोत होगा पर हमारी मार्गणा नील लेशा वाली है तो नील लेशा में जो सर्व विशुद्धि हो सकती है नेचुरली देखो क्या कहते हैं देखो मध्यम परिणाम से भी हटकर है ना वो मध्यम परिणाम तो एकेंद्रीय के भी होता है और वो सर्व विशुद्धि की ओर है या तत्प्राय भी विशुद्ध को अग्नि का एक अपेक्षा तो भी उससे ये क्या होगा मध्यम परिणाम छोड़कर इधर आना है आपको सर्व संकलेश तक आना है मनुष्य गति का कहाँ सवाल है पर उसकी इतनी होती ही नहीं है नारकियों में अन्य नारकियों में इतने वो मध्यम परिणाम में ही तीरंज गति बांधता है मध्यम परिणाम में तीरंज गति और लौटकर मनुष्य गति बांधना चालू हो गया वहां से जितने भी विशुद्ध परिणाम हो गए वहां मनुष्य गति ही बंधेगी इन्हें पंचेंद्रिय जाति के साथ तीरंज गति तो तीरंज गति का अपना जघन्य कहाँ है तो बादर अग्नि का एक वायु का एक सर्व विशुद्ध वाले उनमें जघन्य है तो उस अपेक्षा से यहाँ पर अनंत गुणा होगा ये हो गई तीरंज गति की बात। हाँ बरोबर पंचेंद्रिय जाति नहीं वही तीरंज गति बांधता है वो अनंत गुणा अधिक बांधता है यहाँ तीरंज गति का जघन्य किसके होगा नील लेशा वालों का जघन्य अग्नि का एक वायु का एक में उसकी अपेक्षा यहाँ कैसे होगा अनंत गुणा इवन आप मध्यम परिणाम की अपेक्षा लेंगे तो भी अनंत गुणा होता है वो तो सर्व विशुद्ध अग्नि का एक वायु का एक है सर्व संकलेश में भी बांध रहे हैं ना पंचेंद्रिय जाति के साथ सर्व संकलेश में तीर्यंच गति ही बांधेगा पर तीर्यंच गति का तो उत्कृष्ट बांधेगा वहां पर क्योंकि पंचेंद्रिय जाति प्रशस्त प्रकृति है और तीर्यंच गति अप्रशस्त प्रकृति है जहाँ प्रशस्त का जघन्य है और प्रशस्त का तो उत्कृष्ट होगा यहाँ पर ख्याल में आई बात यह तो वो अनंत गुणा अधिक बांधेगी औदारिक शरीर का नियम से बंद करता है क्योंकि कुंड संस्थान का मध्यम में जगन्य है वो यहाँ वो भी अनंत गुणा बंधेगा। हाँ देखो देखो औदारिक शरीर का नियम से बंद करता है यानी तीर्यंच गति के लिए अग्नि का एक वायु का एक को लिया और हुंड संस्थान के लिए मध्यम परिणाम वाला लेना वो भी यहाँ अनंत गुणा बनता है अब औदारिक शरीर का नियम से बंद करता है। अब ये भी कैसा है तो सर्वसंकलेश नारकी है, औदारिक शरीर प्रशस्त प्रकृति है जो जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। हाँ, यहाँ औदारिक शरीर को ले लिया है। आदि में उन शेष प्रकृतियों का भंग नरक दंडक के समान बताया उन्होंने। नारकी के समान कहना था, क्या कहना था? नरक दंडक यानी कौन सा? फिर से नरक गति का उत्कृष्ट की कहाँ बात है? नरक गति का जघन्य की बात होगी। जघन्य मध्यम परिणाम में होते हैं। नारकी को जरा निकालो। नारकियों में नरक दंड के लिए नारकी के समान लेना चाहिए। नारकी में पेज 40 पर है ना, 39-40 पर, क्योंकि 38 पर तो बाकी कर्मों की बात थी, 39 पर नीचे के पैराग्राफ में तीरंज गति वगैरह बात चालू हो गई थी, यानी 39 से ऑनवर्ड, 39 से 40। शेष प्रकृति ने मनुष्य गति वगैरह सब ले लेना यहाँ पर, क्योंकि उसका तो मध्यम परिणाम में होगा, वो नारकी होगा या एकेंद्री होगा, कोई भी मध्यम परिणाम में बांधेगा तो वहां बंधेगी, तो पंचनी जाति वगैरह अनंत गुना बंधेगी, अप्रशस्त अनंत गुना बंधेगी, केवल सहनन संस्थान वगैरह स्थिर अस्थिर वगैरह जघन्य भी अजघन्य भी बंधेगी, यानी वो तो नारकी के समान। यहाँ औदारिक शरीर के पास वो औदारिक शरीर आदि लिखना। हाँ, औदारिक शरीर आदि में किसको लेना? औदारिक तेजस कारमान, औदारिक अंगोपांग, प्रशस्त वर्ण चतुष, अगुर लघुत्रिक, त्रस चतुष निर्माण, औदारिक शरीर आदि। वहाँ ओराली लिखते हैं ना, ओराली तो उसमें आदि, वो ओराली आदि में आ जाता है, वो ओराली नहीं लिखा है ना वहाँ, यानी ओरालिया आदि में आ गया। हाँ, लिखो वहाँ हिंदी में या अपने आदि लिखे हैं, आदि शब्द उसमें भी आते हैं। ये शेषम उन्होंने ब्रैकेट में डाला था, इन्हें नारकी के समान है। तंतु निरय दंडे भाणी दुआ, या औदारिक शरीर का नारकी का दंड दंडक यहाँ समझना इस तरह से। अब वैक्रियक शरीर के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, अब नारकी तो वैक्रियक शरीर नहीं बांधेगा, तो मनुष्य तिरंज बांधेंगे, तो वैक्रिय शरीर के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव नरक गति आदि 28 प्रकृतियों का बंद करता है, जो अनंत गुना अधिक होता है। मैंने नरक गति वाला जो 28 का पैकेज है ना उसमें, और वैक्रिय शरीर को छोड़ेंगे तो 27 रह जाएगी, नरक गति आदि 28। अभी उसमें तो उन्होंने वैक्रिक शरीर के साथ लगा रहे, तो अंगोपांग उसके सन्निकर्ष में रखेंगे जो अनंत गुना अधिक, अंगोपांग को छोड़कर, इसलिए 26 लिखा है ना हमने, 28 उन्होंने लिखा, हमें 26 लिखवाया था लास्ट टाइम। क्योंकि वैक्रिक अंगोपांग निकाला मैंने लिखा था। देखो शरीर और अंगोपांग दो निकले, और वैसे तो प्रशस्त प्रशस्त वर्ण चतुष्क अलग अलग निकालेंगे, परंतु हम उसको एक गिनकर 28 गिन रहे हैं ना। हाँ नर नगदी 28 26। हाँ यानी वो अनंत गुना अधिक होती है। और वैक्रिक अंगोपांग का नियम से बंद करता है, किंतु वो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यह नरक गति वगैरह बंधे ना, अस्थिर वगैरह बंधेगी, वो भी कैसे बंधेगी? अनंत गुना, क्योंकि उसका जघन्य मध्यम में है, हुंड संस्थान है, अस्थिर आदि छ है, वो तो मध्यम परिणाम में वो जघन्य बनते हैं, और यहाँ कैसे बंधेगी जहाँ वैक्रिक का जघन्य है? अनंत गुना। इसलिए अंगोपांग का जघन्य भी अजघन्य भी, और यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार वैक्रिक अंगोपांग का भी भंग जानना चाहिए, जैसे वैक्रिक शरीर का है वैसे अंगोपांग का है। शेष प्रकृतियों का भंग कृष्ण लेशा के समान, अभी यहाँ शेष लिया तो ऊपर शेष प्रकृतियों का भंग नरक दंड के समान है, वहां औदारिक शरीर आदि जो लिया ना उसमें वो शेष नरक दंडक का आदि लेना है। बिल्कुल नारकी के समान ही है, पर नरक दंडक का अर्थ क्या है? नारकी में जो औदारिक शरीर का जो हमने दंडक देखा था वैसा, यानी औदारिक शरीर तेजस कारमान वगैरह वगैरह सब हमने उसमें आदि डाला ना, तो आदि में ये सारा दंडक आ जाएगा उसमें, इसलिए उन्होंने ऊपर शेषम को ब्रैकेट में डाल दिया है, यानी शेष प्रकृति नहीं समझना यहाँ पर, ये बाकी दंडक जो है नारकी के समान है। लिखा ना उन्होंने नैर दंड भाणी दुआओ, यानी औदारिक के समान नारकी का दंडक यहाँ बता देना। क्योंकि बाकी शेष का होंगे नहीं, शेष प्रकृति यहां नीचे आ गए कृष्ण लेशा के समान। क्या क्या क्या? हाँ तिरंज गति का जघन्य होगा, उसे सर्वविशुद्ध नील वाले के लिए सर्वविशुद्धि है। तीरंच गति का जहाँ जघन्य हो रहा है वहाँ क्या क्या जघन्य बन सकता है, उसके साथ जघन्य क्या बंधेगा? तीरंच गति के जघन्य के साथ और क्या जघन्य बंधेगा, ये मेरा प्रश्न। उपघात और अप्रशस्त वर्ण चतुष्क बाकी सब अनंत गुणा बंधेगी। अभी कृष्ण रेशा में नारकियों के समान बताया था ना, देखो 38 पेज निकालो। ये 39 पर वो था ना, मनुष्य गति वगैरह को लेना है। मिथ्या दृष्टि मध्यम परिणाम में होगा, वहां अन्य प्रकृतियां जघन्य बंधेगी, परंतु संस्थान सहनन वगैरह स्थिर आदि वो जघन्य भी अजघन्य भी बंधेगी, दो विहाय गति। हाँ, अब आते हैं यहां पर अपना पेज 65। कापोत नेशा में तीर्थंकर प्रकृति का भंग नारकियों के समान है। तीरंज गति ऊपर हो गई, तीरंज गति विशुद्धि में बन रही है, वहां स्थिर आदि छ लेना है, विशुद्धि में स्थिर बंधेगी, है ना? आगे बढ़े। कापोत्लेशा में तीर्थंकर प्रकृति का भंग नारकियों के समान है, क्योंकि देखो ये क्या देखना है यहाँ पर, नारकी को ही क्यों लिया? हाँ लक्ष्मी, एक तो नील और कापोत की बात चल रही थी, नील लेशा वाले तीर्थंकर प्रकृति का बंध जघन्य, यानी नारकी तो उसको बांधते ही नहीं है, नील लेशा वाले बांधते ही नहीं है, तो कापोत्लेशा में जघन्य मनुष्य करेंगे। कपोत नहीं, नील में जघन्य मनुष्य करेंगे। हाँ, कापोत में जघन्य नारकी का, क्यों? हाँ, अपन क्यों मनुष्य क्यों नहीं करेगा? वो मिथ्यात्व के सन्मुख जाने वाला कृष्ण में जाता है। हाँ, तो कापोत लेशा वाले चौथे गुणस्थान वाला मनुष्य और कापुत लेशा वाला नारकी, इनमें कितने भी संकलेश क्यों न हो, तो कापुत लेशा वाला जो है वो चौथे गुणस्थान वाला जो है ना, वहां पर लेना है उसको, क्योंकि मनुष्यों में कापुत लेशा वाला जो है अगर वो संकलेश की तरफ जाएगा तो नील कृष्ण तक बढ़ेगा। हाँ, ये तो कापुत ही है ना, चौथे गुणस्थान के योग्य अधिक से अधिक उसके संकलेश या विशुद्धि में जो उसका टर्निंग होता है तो उसकी कापोत की कापोत ही रहेगी, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य कापोत लेशा में नारकी के होगा। हाँ, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि है। हाँ, तो सम्यक दृष्टि जो पंचेंद्रिय वगैरह मिथ्या दृष्टि को सर्व संकलेश वाले को जघन्य था, अभी सम्यक दृष्टि जीव है वो सम्यक के योग्य संकलेश हुआ है। हाँ, जरा शांति रखो, लोगों को समझने दो। कपोत्लेशा में हमने लिया तो कपोत्लेशा वाला तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला तो चौथे गुणस्थान वाला है, तो कपोत्लेशा वाला नारकी जो है सर्व संकलेश में पंचेंद्रिय जाति औदारिक शरीर वगैरह वगैरह सभी बांधेगा, वहां वो जघन्य बांधेगा। सम्यक दृष्टि कितना बांधेगा? वो अनंत गुणा अधिक बांधेगा, भले वो संकलेश वाला है पर ऐसा संकलेश वाला नहीं जो मिथ्या दृष्टि संकलिष्ट होता है, चौथे के योग्य उसके संकलेश हो गए, ऐसा भी संकलेश नहीं होगा कि जो मिथ्यात्व के सन्मुख है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला नारकी कभी मिथ्यात्व में नहीं जाएगा, तो उसके तत्प्राय वाला संकलेश वाला लेना चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से, इसलिए बाकी प्रकृतियां में अनंत गुणा अधिक बनती है। क्या कहते हैं, तत्प्रायोगिक संकलेश है। हाँ, पर वो कैसे बंधेंगे? अनंत गुणाधिक बंधेंगे। निकालो, नारकी को निकालो। अड़तीस, उनतालीस, चालीस होगा, तीर्थंकर की बात आई होगी ना, ओके समान बताए। जरा शांति रखो, ओग से निकालो। ओग में तो कृष्ण रेशा वाला था, पर उसके साथ बंधने वाले जो संनिकर्ष है वो वैसा ही होगा जो हम यहाँ ले रहे हैं। पेज नंबर 38 पर है तीर्थंकर का, 78 नंबर का पॉइंट। अभी कपोतलेशा में तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला तो मनुष्य गति बांधेगा, ओग में तो वो देवगति बांध रहा था। पंचेंद्री जाति वगैरह वगैरह सब वो अनंत गुणा अधिक बांधेगा, उसमें प्रशस्त अप्रशस्त सभी ले लिए। बाकी अस्थिर अशुभ वगैरह वो तो तीनों को हाँ अनंत गुणा ही लेना है, केवल उसमें मनुष्य गति बांधता है ऐसा लेना है। अब आगे बढ़ते पीतलेशा की बात चलेगी अपनी। पीतलेशा में भी सर्व संकलेश वाले कौन हो गए? तो देव हो गए, क्योंकि अभी नीललेशा में भी अंत कोड़ा कोड़ी वाला बंधे ज्यादा नहीं होता, तो उसके कपोत में, पीत में, पद्म में तो सारे जो सर्व संकलेश वाले देव ही हो गए। परंतु विशुद्धि के लिए तो पीतलेशा तो सातवें गुणस्थान तक है, तो विशुद्धि में जो जघन्य बनती है अप्रशस्त प्रकृतियां वो मनुष्यों में लेना पड़ेगा सात्विक गुणस्थान में, और सर्व संकलेश में जघन्य बनती है वो देवों में लेना पड़ेगा। अब यहां पढ़ते देखो, पीतलेशा में सात कर्मों का भंग देवगति के समान है। इतनी विशेषता है कि क्रोध संज्वलन के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, ये कौन सा है? अप्रमत्त है, सर्वविशुद्ध। और तो वहां तो चार संज्वलन बनते, तो क्रोध के साथ तीन संज्वलन और पांच नौकषाय का नियम से बंद करता है, पुरुषवेद, हास्यरति, भैजुगुप्सा। किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। मैंने पीतलेशा में वही उसका जघन्य का बंध का पॉइंट है, स्वामी एक ही है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। दो गति, मैंने तीर्यंज गति और मनुष्य गति, दो जाति, ये बांधने वाले तो देव ही है। तीर्यंज गति क्योंकि मनुष्य पीतलेशा वाला तो देवगति का ही बंध करेगा। दो जाति यानी एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय, छह संस्थान, छह सहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहाय गति। अब ये सब मध्यम परिणाम में जघन्य बन रहे। त्रस स्थावर और तीन युगल का भंग, सौधर्म कल्प के समान है। तीन युगल में किसको लिया? सिर सिर को नहीं लेना इसको, जो देव के साथ बनती स्थिरस्थि का होता है, परंतु सौधर्म कल्प के समान बताया ना। तीन युगल ही क्यों लिया? मनुष्य और तीर्यंच है वो दुर्भग दुस्वर वगैरह नहीं बांधेंगे, इसलिए बाकी यहाँ लेना उसको, देव बांधेंगे। सौधर्म कल्प के समान बताया ना, क्योंकि अन्य तीन युगल बाद में लिए होंगे शायद, देखो सिरादि तीन युगल का जगन्या वो तो बाद में बताया, यहाँ तीन युगल है ने दुर्भग दुस्वर अनादे और उसके प्रतिपक्षी यानी सुभग दुर्भग इस तरह से। सुभग दुर्भग होगा, सुस्वर दुस्वर होगा, आदे अनादे। सभी का मध्यम में होगा, परंतु दुर्भग दुस्वर अनादे बांधने वाले देव ही होंगे। मनुष्य तीरंज देवगति के साथ सुभग सुस्वर और आदेय का ही बंध करेंगे, इसलिए सौधर्म कल्प के समान बता दिया। बराबर है ना ये? देखो दो गति दो जाति छह संसार छह सन दो आने पूरी दो विहार गति। तीन युगल का भंग सौधर्व कल्पक के समान है, यानी उनका सन्निकर्ष की बात है ना, उनका भंग है ना, उनका सन्निकर्ष मध्यम परिणाम में जो जघन्य बनते हैं उसके साथ जो प्रशस्त जो बंधेगी वो अनंत गुणादि की बंधेगी। इसलिए उसके साथ औदारिक शरीर वगैरह ले लेना है। अब देवगति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव पंचेंद्रिय जाति आदि का नियम से बंद करता है। अब देवगति का जघन्य कौन करेंगे? देवगति बांध ही रहे तो मनुष्य तीर्यंच, परंतु वो कहाँ बंधेगी? तो मध्यम परिणाम में बंधेगी, पीतलेशा में सर्वसंक्लेश में होगी। वहां पंचेंद्रिय जाति आदि का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणाधिक होता है, क्योंकि पंचेंद्रिय जाति का जघन्य कौन करेंगे? तो देव सर्वसंक्लिष्ट वाले करेंगे। पीतलेशा के लिए ये संक्लिष्ट वाला होगा, पीतलेशा में संक्लिष्ट। पर पीतलेशा का संक्लिष्ट ऐसा नहीं होगा कि जो देव के होता है, तो तत्प्रायोग वाला नहीं है रहा इसमें, क्योंकि मनुष्यों में तत्प्रायोग ही संक्लेश हो गए। और पीतलेशा के लिए जो पंचेंद्रिय जाति वगैरह का बंध होता है सर्व संक्लेश में, तो पीतलेशा में इतना संक्लेश किसके होता है? तो देव के होता है। इसलिए सब आदि लिखा ना, यहाँ पर पंचेंद्रिय आदि लिखा था ना, आदि में पूरा लेना उसका पैकेज पूरा। देवगति के साथ बंधने वाली जो है ये केवल वैकृत शरीर अंगोपांग और देवगत्यानुपूर्वी को छोड़कर लेना है। इन्हें पंचेंद्रिय जाति है, तेजस कारमान है, अगुल लघु वगैरह सब सब लेना है। यहाँ पर अनंत गुणा अधिक होते हैं। वैकृत शरीर वैकृत अंगोपांग और देवगत्यानुपूर्वी का नियम से बंद करता है, किंतु वह जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यानी देवगति के साथ ही नियम से बंधने वाली प्रकृतियां हैं। देव तो इसको बांधेगी नहीं, मनुष्य ही इसको बांध रहे हैं, मनुष्य तीर्यंश। देखो देखो यहाँ तत्प्रायोग संक्लेश है, पीतलेशा के लिए यह तत्प्रायोग संक्लेश है, मनुष्यों के लिए भले पीतलेशा में सर्व संक्लेश कहलाएगा, परंतु पीतलेशा वाला देव इससे ज्यादा संक्लेश वाला है, तो वहां वो पंचेंद्रिय जाति का जघन्य बांधेगा और उस अपेक्षा से यहाँ वो अनंत गुणा अधिक बांधेगी। तो वो अनंत गुणा अधिक हुआ और वैकृत शरीर अंगोपांग और देवगत्यानुपुरी वो जघन्य भी होगा अजघन्य भी होगा, और यदि अजघन्य होगा तो छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है, इसी प्रकार ये चारों का आपस में ऐसा ही होगा कि वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग और देवगत्यानुपूर्वी का भंग जानना चाहिए। औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मान शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरु लघुत्रिक, आतप, उद्योत, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और तीर्थंकर का भंग सौधर्म कल्प के समान है, क्योंकि उनके जो तीर्थंकर की बात तो चौथे गुणस्थान वाला वो करेगा, उन बाकी तो जो है मिथ्या दृष्टि देव इसका जघन्य करेगा, ये सब प्रशस्त प्रकृति वाले, सर्व संकलेश वाला। और पीतलेशा वाले मनुष्य जो तीर्थंकर प्रकृति बांधेंगे, पीतलेशा वाले देव बांधेंगे, तो उसमें संकलेश देवों की होगा। क्योंकि मनुष्य में उतने संकलेश होने लगे तो कपोत में चला जाएगा, है ना? हाँ? अरे पण पीत से डायरेक्ट कृष्ण में थोड़े जाएगा, पीत से कपोत, कपोत से नील, नील से कृष्ण चला जाएगा। यानी इनके जघन्य के साथ, औदारिक शरीर के जघन्य के साथ, हाँ ये तो बंधेगी, तो उसमें क्या बंधेगी नियम से? देखो औदारिक का जघन्य हो रहा है तो पीतलेशा वाला देव है, तो क्या बांधेगा? पंचेंद्रिय बांधेगा कि एक इंद्रिय बांधेगा? पीतलेशा है तो एक इंद्रिय जाति और तिर्यंज गति एक इंद्रिय जाति का ही बंध करेगा, क्योंकि पीतलेशा वाला देव है, वो क्या बांधेगा सर्व संकलेश में? एक इंद्रिय का है, तो एक इंद्रिय के साथ स्थावर का भी जघन्य, बाकी सभी प्रशस्त प्रकृति जो है, पर एक इंद्रिय का कैसा बंधेगा? अनंत गुणा बंधेगा। एक इंद्रिय और स्थावर का जघन्य मध्यम परिणाम में होता है, यहां वो कैसे बंधेगा? अनंत गुणा अधिक बंधेगा। और एक इंद्रिय जाति बंधी, पंचेंद्रिय की बात ही नहीं यहां पर। देखो 54 पेज निकालना, नीचे से दूसरा पैराग्राफ मिला आपको। औदारिक शरीर का जघन्य कर, ये तो भवनवासी वगैरह सौधर्म तक की बात है ना, औदारिक का जघन्य कर रहा है। तिर्यंज गति, एक इंद्रिय जाति, हुंड संस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुर्ष, तिर्यंज गत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर और अस्थिर, यानी स्वर के बिना, इन पांच का नियम से बंद करता है जो अनंत गुना होता है। अब इसके समान जघन्य बंधने वाली कौन सी होगी? तेजस, कारमान, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुर लघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माण, वो नियम से होगा, जघन्य भी अजघन्य भी। आतप उद्योत अगर बनता है वो भी जघन्य भी अजघन्य भी, वो कदाचित में चली जाएगी, इस तरह से उसका सन्निकर्ष देखा था हमने। हाँ अब अपने पेज पर आना, 66 पर, ऊपर से एक दो तीन तीन छ आठवीं लाइन, स्थिर आदि तीन युगल के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव दो गति का कदाचित बंद करता है। अब ऊपर जो तीन युगल लिए थे ना, कौन से? सुभग, दुर्भग वगैरह वगैरह। हाँ यदि बंद करता है तो वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। ये दो गति में कौन सी लेना है यहाँ पर? हाँ क्योंकि वो स्थिरादि तीन मध्यम परिणाम में है और तिर्यंच मनुष्य गति का जघन्य भी मध्यम परिणाम में है, इसलिए यहाँ दो गति से मनुष्य गति, तिर्यंच गति लेना, कि जो जघन्य भी हो सकता है अजघन्य भी होगा
और रजोगुण होगा तो छह स्थान पतित होगा। ये समझ में आई बात? अब देवगति भी तो बन सकती है, क्योंकि सिर का जो मध्यम परिणाम वाला समय दृष्टि भी बांध सकता है, मिथ्या दृष्टि भी बांध सकता है, मनुष्य भी बांध सकता है, देव भी बांध सकता है। तो देवगति चतुष्क का कदाचित बन करता है जो अनंत गुणाधिक होता है, क्योंकि देवगति का अपना जघन्य कहाँ है? तो सर्व संक्लिष्ट वाले को होगा, पितलेशा में, मनुष्य तीर्यंच के। और ये स्थिर कहाँ है? मध्यम परिणाम में। फिर से देखो, तीर्यंच गति और मनुष्य गति जघन्य भी बन सकती है, क्योंकि स्थिर का भी जघन्य मध्यम परिणाम में और तीर्यंच मनुष्य गति का भी जघन्य मध्यम परिणाम में। परंतु पीतलेशा वाले के लिए देवगति चतुष्क का जघन्य कहाँ होता? तो संक्लेश वाला मनुष्य तीर्यंच। सर्व संक्लिश वो पीतलेशा वाला मनुष्य तीर्यंच। इसलिए उसके यह कैसे बंधेगी मध्यम परिणाम में? अनंत गुणाधिक बंधेगी। इसका शेष भंग सौधर्म कल्प के समान है। शेष में क्या बचा अभी? अप्रशस्त कर्म शायद अभी हमने देखा था ना 54 पर। औदारी कांगोपांग को भी लिया था ना वहां पर। क्योंकि औदारी कांगोपांग के लिए तत्प्रायोगिक संक्लेश में लिया था हमने। अंगोपांग बंधेगा तो पंचेंद्रीय जाति बंधेगी, और औदारिक बांधु वाला देव ही है ना, देव सौधर्म वाला, तीर्यंच गति बंधेगी उसके साथ। ये सब अनंत गुणाधिक बंधेगी, पंचेंद्रीय जाति भी। वो उस पर हमने चर्चा की थी ना, पंचेंद्रीय जाति को और औदारिक अंगोपांग को। अब ये हो गई बात। अब उसके आगे पेज नंबर 66, वो पैराग्राफ के नीचे से चौथी लाइन, आहार द्रिक। अब ये जो छठे के सन्मुख वाले हैं, इसको जघन्य बांधेगा मनुष्य। तो छठे के सन्मुख वाला वो बांध रहा है, तो वहां उसके साथ बंधने वाली जो प्रकृतियां देवगति वगैरह, यानी आहार द्रिक को छोड़कर अन्य देवगति वगैरह 28 की प्रकृति बंधेगी उसके। तो उसमें जो प्रशस्त है वो भी अनंत अनंत गुना बंधेगी। क्यों? अरे देवगति का जगन्य कौन करेगा पीतलेशा में? चौथे गुणस्थान वाला, सर्व संक्लिष्ट वाला। नहीं समझे? तो आर्य द्विक के साथ ये पंचेंद्रीय जाति वगैरह वगैरह सब अनंत गुणा बंधेगी। और उसके साथ बंधने वाली जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं वो भी आहारक द्विक के साथ क्या बंधेगा? अस्थिरादि बंधेगी। अस्थिरादि नहीं, स्थिरादि, स्थिरादि मुझे कहना, स्थिरादि बंधेगी। हाँ, सातवां गुणस्थान है ये, बंद हो रहा है, सातवें आठवें में होता है, यहाँ स्थिरादि का ही बंद होगा। वो स्थिरादि भी कैसे बंधेगी? हाँ, मध्यम परिणाम में वो भी छठे तक ही होगा ना। हाँ, यहाँ तो अनंत गुणाधिक बदले। वो प्रशस्त वर्ण चतुष्क उपघात, वो भी सातवें गुणस्थान वाला सर्व विशुद्ध वाला लेना है, मनुष्यों के समान है। यानी वहां बंधने वाली जो अभी देवगति वगैरह ही बंधेगी, वो सब अनंत गुणाधिक बंधेगी। केवल ये अप्रशस्त ही आपस में जघन्य बन सकती है। इसी प्रकार पद्मलेशा में भी जानना चाहिए। अब पद्मलेशा वाला एक इंद्रिय जाति स्थावर को नहीं बांधेगा, इतनी विशेषता है कि पंचेंद्रिय जाति औदारिक अंगोपांग त्रस और सर्वसंक्लिष्ट परिणामों से बंधने वाली सब प्रकृतियों का भंग सहस्रार कल्प के समान है। यानी पद्मलेशा वाले सनत कुमार से लेकर सहस्रार तक के है, यानी सर्वसंक्लेश में यही प्रकृतियां सब बनती है, वो जघन्य बन देगी। तथा तीर्थंकर प्रकृति का भंग देवों के समान है, क्योंकि तीर्थंकर का जघन्य हो रहा है, तो तीर्थंकर का जघन्य है तो सर्वसंक्लेश तो नहीं कहेंगे हम, तत्प्रायोगिक संक्लेश में कहेंगे, क्योंकि सर्वसंक्लेश वाला तो मिथ्यात्व के सन्मुख होगा चौथे गुणस्थान वाला। ये तो ऐसे भी चौथे गुणस्थान में ये बनती है, बाकी जो पहले गुणस्थान में जो प्रशस्त बन रही है पंचेंद्रिय वगैरह मनुष्य गति वगैरह, उसकी अपेक्षा यहाँ क्या होगा, वो अनंत गुना होगा। और बाकी भी शेष प्रकृतियां जो है वो भी अनंत गुना बन देगी, अप्रशस्त भी। यहाँ तीर्थंकर के जगन्य के साथ अस्थिर वगैरह सब सब देखो। अब 66 पेज नीचे का पैराग्राफ, शुक्ल लेशा में भी संक्लेश वाला देव ही होगा। सात कर्मों का भंग ओघ के समान है, ये ओघ जैसे शुक्ल लेशा में भी गुणस्थान 13 तो है, 1 से 13 तो के समान तो मोहिनी का भी सर्वत्र घटित हो जाता है। देवगति 4 और आहारक द्विक का भंग पद्मलेशा के समान है, क्योंकि देवगति का देवगति चतुष्क का जघन्य बांध रहा है। शुक्ललेशा के लिए तत्प्रायोगिक संक्लेश कहेंगे, मनुष्य शुक्ल लेशा के लिए वो सर्वसंक्लेश नहीं है, क्योंकि शुक्ल लेशा में सर्वसंक्लेश देवों के होगा। ख्याल में जैसे हमने ऊपर लिया था ना तत्प्रायोगिक संक्लेश, मैंने वो शुक्ल लेशा वाले के लिए वो सर्वसंक्लेश नहीं, वो तत्प्रायोगिक है। तो देवगति चतुष्क जो आपस में है वो एक का जघन्य तो अन्य जघन्य हो गए, परंतु देवगति के साथ जो पंचेंद्रिय जाति अगर बंधेगी तो वो कैसे बंधेगी? हाँ, यानी वो जो पंचेंद्रिय जाति औदारी कंगोपांग त्रस वगैरह ये जो प्रकृतियां बनती है वो सर्वसंक्लेश वाला देव लेना यहाँ पर। अरे हमने बोला ना ये चार आपस में जघन्य ही बंधेगी, जघन्य अजघन्य। कौन से चार? देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर और वैक्रिक अंगोपांग। इनका आपस में जघन्य भी अजघन्य भी होगा और 6 स्थान पतित होगा, परंतु देवगति के साथ वो पंचेंद्रिय जाति तेजस कार्बन वगैरह बंधेगी, वो अनंत गुणा अधिक बंधेगी। शेष प्रकृतियों का भंग आनत कल्प के समान है, क्योंकि वहां आनत कल्प क्या बांधेगा? मनुष्य गति का ही बंध करेगा, तो मनुष्य गति का जघन्य है तो वहां तो मनुष्य गति ही बनती है, तो सर्व संक्लेश में लेना। तो पंचेंद्रिय जाति औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग वो सारा सब जघन्य बन देगी। हाँ, उसके साथ बनने वाले वो तो कुंड संस्थान वगैरह कैसे बनेगी? अस्थिर आदि अनंत गुना, क्योंकि जो जो मध्यम परिणाम में जघन्य बनते हैं संस्थान सहनन वगैरह, अभी सर्व संक्लिष्ट है तो वहां हुंड संस्थान बंधेगा, इसलिए वो आनत कल्प के समान बता दिया। 56 यानी मनुष्य गति का जघन्य करने वाला वो पंचेंद्रिय जाति वगैरह जो बनती है वो जघन्य भी अजघन्य भी होगी उसके। और नियम से बांधने वाले अप्रशस्त कौन सी होगी? यहाँ पर 6 हुंडक संस्थान है, असंप्राप्त पाटी का सहन है, अप्रशस्त वर्ण चतुष, उपघात, अप्रशस्त विहाय गति, अस्थिर आदि छह, वो नियम से होगी। ये सारी कैसे होगी? अनंत गुण अधिक होंगे। हाँ, कहाँ गया हमारा? आनत कल्प के समान है। हाँ, और अप्रशस्त वर्ण चतुष्कर उपघात का भंग हो के समान है, क्योंकि क्षपक होगी ना इसमें, शुक्ल लेशा में वो जघन्य होता है वहां पर, बाकी उसके साथ बंधने वाली अनंत गुणा बंधेगी। ये अप्रशस्त वाली आपस में जघन्य भी जघन्य बंधेगी, पर जघन्य और अजघन्य दोनों का विकल्प होगा, क्योंकि गुणस्तर आठवा है। अभव्यों में सब प्रकृतियों का भंग मत्य ज्ञानियों के समान है। इतनी विशेषता है कि अप्रशस्त वर्ण के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव तिर्यंज गति और तिर्यंज गत्यानुपूर्वी का कदाचित बंद करता है, क्योंकि सातवें नरक में लेना है उसको, क्योंकि अभव्यों के योग्य सर्व विशुद्धि होगी उसकी, तो तिर्यंज गति बनती है ना थ्रू आउट, क्योंकि अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है। क्यों? जरूरी नहीं, अभव्य में कहाँ सम्य दृष्टि होता है? मैंने अभी बताया ना, अभव्यों के योग्य सर्व विशुद्ध। अभव्यों में सातवें नरक का नारकी लेना, यानी वो पंचेंद्रिय है और वो एकेंद्रिय से इसकी विशुद्धि ज्यादा होगी। तो तिर्यंज गति गत्यानुपूरी से कदाचित, कदाचित क्यों लिया? क्योंकि बाकी तो जो है ना, तो उतनी विशुद्धि में वो तो, ये तो मिथ्या दृष्टि है। कितनी भी विशुद्धि हो गई तो तिर्यंज गति बांध रहा है सातवें नरक में, इसलिए वहां वो बंद करता है। तो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है, और यदि अजगण्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। अब कहते दो गति, दो शरीर, दो अंगोपांग, वज्रषभ नारा सहनन, दो अनुपूर्वी और उद्योत का कदाचित बंद करता है। किसके साथ हो रही है बात? अप्रशस्त वर्ण के जघन्य के साथ हो रही है। तो जघन्य हो रहा है ना, वहां विशुद्धि है, तो विशुद्धि में क्या बांधेगा? मनुष्य और देव, ऐसे दो गति क्यों लिए? जरा शांति रखो लक्ष्मी, ये अभव्य है, अप्रशस्त का वर्ण का जघन्य कर रहा है, इसका अर्थ है वो सर्व विशुद्ध है। तो सर्व विशुद्ध अवस्था में तिर्यंज गति तो सातवें नरक का नारकी बांधेगा, मनुष्य गति कौन बांधेगा? कौन बांधेगा? देव और नारकी, सर्व विशुद्ध अभव्य है, और देवगति कौन बांधेगा? मनुष्य तिर्यंज, ख्याल में है ना, इसलिए दो गति को लिया। नरक गति कौन बांधेगा? विशुद्धि में नहीं बांधेगा। हाँ, देवनारकी वो मनुष्य गति को बांधेंगे और मनुष्य तीरेंचे वो देवगति को बांधेंगे इतनी विशुद्धि में। तो जो गति बांध रही वैसा वो शरीर अंगोपांग बांधेगा। अगर मनुष्य गति बांध रही है तो वज्रषभ नारा सहनन बांधेगा, क्योंकि सर्व विशुद्ध है ना वो, दो अनुपूर्वी और उद्योत का कदाचित बंद करता है। क्योंकि ये कौन सा जीव लिया है? सर्व विशुद्ध है, वही उद्योग का कदाचित बंद करता है, लिखा ना। अभव्यों की है जो अनंत गुणा अधिक होता है, उद्योग का कदाचित, क्योंकि तिर्यंज गति कदाचित बनती है ना, इसलिए उद्योग भी कदाचित बंधेगा। सर्व विशुद्धि में तो अनंत गुणा अधिक बंधेगा, तीरियां जगती तो जघन्य बन रही थी, कदाचित बनने वाली। उद्योत बंधेगा तो अनंत गुना बंधेगा, यानी उद्योत भी सातवें नरक में लेना। पंचेंद्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मन शरीर, समचतुर्थ संस्थान, ये सर्व विशुद्ध अभव्य लिया है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर पंचेंद्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मन शरीर, समचतुर्थ संस्थान, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु त्रिक, प्रशस्त विहाय गति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माण का नियम से बंद करता है। देखो भले वो तीरंज गति बन रही हो, मनुष्य गति बन रही हो, देव गति बन रही हो, वो उसके स्वामी जुदे जुदे है, परंतु सर्व विशुद्ध अभव्य है। तो इसके साथ नियम से ये प्रकृतियां बंधेगी। वो कैसे बंधेगी? तो अनंत गुणा बंधेगी, क्योंकि ये सब संकलेश में जगन्य बंधने वाली है, और स्थिरादि तो मध्यम परिणाम में जगन्य बंधने वाली है। यहाँ पर वो तो अनंत गुणा अधिक बंधेगी। अप्रशस्त गंध आदि तीन वर्ण के साथ लगा रहे ना, तो गंध आदि तीन और उपघात का नियम से बंद करता है, वो भी अप्रशस्त है। किंतु वह जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। विशेषता बताई ना ये बात, मत्य ज्ञानियों में क्या बात थी? हाँ वो तो मत्य ज्ञानियों में संयम के सम्मुख वाला, यानी वो मनुष्य गति का ही जीव था, वो तो नियम से देव गति बांध रहा था। तो यहाँ ये अलग अलग विकल्प लिए, क्योंकि अभव्य कहने से तो चारों गति के आ गए। तत्प्रायज्ञ अभव्यों के लिए वो सर्व विशुद्ध कहेंगे। अब आगे बढ़े, बाकी तो प्रकृतियां सब मत्य ज्ञानी के समान बताई, यानी जो देवगति का जगन्य कर रहा है या मनुष्य गति का जगन्य कर रहा है, स्त्रीरंज गति का, तो उसके साथ वो कहाँ कहाँ क्या क्या अप्लाई करना वो देखना हमको। अब आगे बढ़ते, वेदक सम्य दृष्टि और उपशम सम्य दृष्टि जीवों में अवधि दर्शनी जीवों के समान भंग है, मात्र अप्रशस्त वर्ण चतुष्क और उपघात का भंग ओघ के समान है। क्योंकि अवधि दर्शनी में तो क्षपक भी लिया था हमने, समय दृष्टि कहो तो सामान्य से समय दृष्टि तो क्षपक के वो जगन्य था, और यहाँ तो उसके अपने उपशम में तो श्रेणी में ले सकते हैं, ओघ के समान है। ओघ में क्या डिफरेंस हुआ? तो अवधि दर्शनी जीवों के समान है और ओघ के समान है। जरा निकालो समय दृष्टि, उसमें अप्रशस्त वर्ण चतुष्क का कुछ अलग है क्या? नहीं, स्वामी में डिफरेंस होगा, सन्निकर्ष में क्या डिफरेंस होगा? जरा ओघ भी निकालो और अवधि मैंने अभिनिबोधि ज्ञानी भी ले लो। त्रेसठ पान है, हाँ वहां पर भी बताया है कि अप्रशस्त वर्ण चतुष्क उपघात का भंग ओघ के समान है। पेज नंबर 64 पर आभि निबोधि ज्ञानी की प्ररूपणा में ये बताया था 142 नंबर के पॉइंट में, आहार द्वी कपृष सवर्ण जतिष उपघात का भंग ओघ के समान है। तो यहाँ अलग से क्यों लिया, वेदे को वो समय ओदी दंसनी भंगो अपसत्त चार उपघात ओगम औदी दर्शनी में भी ओग के समान बताया था। ओग का कहाँ मिला, क्यों नहीं होगा, तो ओग के समान क्यों लिखा, पर संज्वलन का संबंध कहाँ है यहाँ पर, हमारे स्वस्थान है कि परस्थान है, मोहनी का मोहनी के साथ वर्ण देखो देखो देखो, मात्र अप्रशस्त वर्ण का उपघात का ओके समान बताया, अप्रशस्त वर्ण चतुष किस में है, देखो वेदक साम्य दृष्टि उपशम साम्य दृष्टियों में अवधि दर्शनी जीवों के समान भंग है, अवधि दर्शन में इन दोनों का तो ओग के समान ही बताया, तो ये ऐसा लिखने की क्या जरूरत थी। देखो देखो वहां क्या था, मैं निकालती हूँ अभी 64 पेज पर, ओक के समान मोहनी का नहीं होगा परंतु इनका क्या होगा, इसमें वर्ण चतुष्क का क्यों नहीं अलग, वर्ण चतुष्क में क्या डिफरेंस है, वो तो ओक का कहो या अवधि दर्शनी का कहो, अरे स्वामित्व में डिफरेंस है। देखो निकालो ओग निकालो, पहले ओग निकालो, कहां पर है 33 35, अप्रशस्त वर्ण के जगन्य और हमारा वेदक समय दृष्टि है औदी दर्शनी में भी ओग के समान ही बताया था, अरे पर डिफरेंस कहाँ है उसमें, औदी दर्शनी में और ओग में डिफरेंस कहाँ है, इतनी विशेषता क्यों लिखा, ये मेरा प्रश्न है। हाँ मात्र मात्र ने कहा, एक मिनट ऊपर कहाँ लिखा मात्र, अपसत चार उप ओगम ओदी दंसन वेदग उम ओदी दंसनी भंगो अपसत चार उपघात ओगम, अच्छा अच्छा आहार द्विक का भंग कैसा होगा, उसकी बात नहीं जो प्रश्न सवर्ण चतुष्क का जगन्य के साथ वो छठे के सन्मुख वाला है और ये तो सर्व विशुद्ध वाला सातवें वाला है। तो वो उसमें फर्क कहाँ पड़ा? ऊपरी लिखने की अलग क्या जरूरत थी? ओदी दंसनी भंगों में सभी सब कुछ आ जाता ना। अवधि दर्शनी में तो देखा ना हमने 64 पेज पर सब लिया है। मात्र नहीं लाया, खाली अपसत चतुष्कर वही सा। नहीं ऐसे पढ़ा था कहीं। वैदिक समय देखो क्षायिक को तो अलग लिया था उन्होंने क्योंकि क्षायिक की बात क्या थी कि मनुष्य गति पंचक का जगन्य अनुभव करने वाला जो तीर्थंकर प्रकृति का कदाचित वन करता है, ये बात उसमें ली थी क्षायिक को डिफरेंस करने के लिए, क्योंकि क्षायिक वाला तो मध्यात्व में जाता नहीं है इसलिए उसकी बात अलग थी। तो यहाँ ये जो संकलिष्ट वाले हो गए मिथ्यात्व में जा सकते हैं, उसको अलग क्यों किया पता नहीं लगा। अपसत चतुष्क उपघात उगम, और वहां तो आहार द्विक भी लिया था उगम के साथ, तो आहार द्विक का भी वैसे घटित होगा ना। उपशम समय वो आहार द्विक का बंद करने में तो कोई अर्जा नहीं है ना, उदय नहीं होता है, बंद तो हो सकता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये वैदिक समय दृष्टि उपशम समय दृष्टि की बात हो गई। जैसे हम अभिनिबोधिक में केवल शायद को अलग से निकाला था, क्यों? क्योंकि वो शायद वाला कितना भी जगन्य क्यों न करे वो तो मिथ्यात्व के सन्मुक्त नहीं होता है, और वैकि तीर्थंकर का जगन्य करने वाला मनुष्य लिया था, और वहां तो क्षायिक में तो देव भी कर सकता है और वो मनुष्य गति बांधते ही। साधन समय दृष्टि जीवों में मत्य ज्ञानी जीवों के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व को छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। यहां तो मिथ्यात्व का बंध ही नहीं है, अनंतानुबंधी का एक का होगा जगन्य तो अन्य तीन का जगन्य होगा इस तरह से, और वहां बनती है बाकी प्रकृतियां वो तो अनंत गुणा अधिक बनेगी। यह नपुंसक वेद भी नहीं बनेगा, स्त्री वेद के जगन्य के साथ बाकी सब जो प्रकृतियां हैं वो अनंत गुणा अधिक बनेगी, है ना? ऐसा ही लेना पड़ेगा। तीर्यंच गति और तीर्यंच गत्यानुपूर्वी का भंग ओघ के समान है, क्योंकि साधन में तीर्यंच गति ही बांधेगा सर्व विशुद्ध में सातवें नरक का नारकी। तो उसका जगन्य है तो वहां पर जो पंचेंद्रिय जाति वगैरह बांधेगी वो अनंत गुणा अधिक बांधेगी, और बाकी अप्रश्न से विहाय गति और हाँ जगन्य अजगन्य बांधेगी। दो गति पांच संस्थान, अभी तीन इंच गति तो हो गई, अब रही कौन सी, मनुष्य और देव। नरक गति तो साधन वाला बांधता नहीं है, तो दो गति, पांच संस्थान, पांच सहनन, दो अनुपूर्वी, दो विहाय गति और सिरादि छह युगल का भंग ओघ के समान है। मध्यम परिणाम में वो जघन्य होगा। इतनी विशेषता है कि पर्याप्त प्रकृति को संयुक्त करके कहना चाहिए। यहाँ अपर्याप्त नामकर्म बनता ही नहीं है, इसलिए पर्याप्त के साथ वाला ये करना, मनुष्य पर्याप्त का बंध होगा। क्योंकि जब हम मनुष्य गति को मध्यम परिणाम में जघन्य कहते हैं तो वहां पर्याप्त अपर्याप्त का विकल्प रहता है, यहाँ पर केवल पर्याप्त नामकर्म बंधेगा। और पर्याप्त नाम कर्म जो है हाँ सर्वसंकलेश में जगह ने बंधेगा, या उसके साथ वो अनंत गुणा वाला होगा। पंचेंद्रिय जाति के जगन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव तिर्यंच गति आदि का नियम से बंध करता है। अब ये सर्वसंकलेश वाला है, सासाधन वाला है, तो तिर्यंच गति बंधेगा, पंचेंद्रिय जाति बांधेगा, संस्थान कौन सा बांधेगा, हुंड संस्थान यहाँ नहीं बांधेगा, असंप्राप्त सुपाटी का नहीं बांधेगी। हाँ, जो अनंत गुणा अधिक होता है, औदारिक आदि, आदि लिखा नहीं यहाँ पर, ऊपर क्या लिखा है, उरा लिगादि, सर्व संकलिष्ट परिणाम से बंध को प्राप्त होने वाली प्रकृतियों का नियम से बंध करता है, किंतु वह जगन्य अनुभाग का भी बंध करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंध करता है। पंचेंद्रिय जाति का जगन्य हो ना, तो सर्व अन्य तो जातियां बनती नहीं है, इसलिए कितना भी संकलिष्ट क्यों ना हो, यहाँ पंचेंद्रिय जाति का ही बंध होगा। तो तिर्यंच गति बंधेगी, उसके साथ बंधने वाली जो हाँ जो जिसका उच्चित्य हो गई उसको छोड़कर उसके बाद वाली सब प्रकृतियां लेना है, उसमें से संकलिष्ट जो जगन्य अनुभाग का भी बंध करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंध करता है। यदि अजगन्य अनुभाग का बंध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। उद्योत का कदाचित बंध करता है, क्योंकि पंचेंद्रिय जाति के संकलिष्ट जगन्य के साथ बात हो रही है, तिर्यंच गति बांध रही है, तो तिर्यंच गति के साथ कदाचित बनती है। यदि बंद करता है वह जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी का भंग है, ये तो हमने क्वेरी दिया था। उज्जोष्या तंतु एवं मनुष मनुषाणु तंतु, देखो देखो ये सासाधन समय दृष्टि है। अच्छा, तो मनुष्य गति का भी जघन्य जो है हम आनत वाला देव ले सकते ना उसमें। आनत देव मिथ्या दृष्टि वो सासाधन सर्व संकलेश वाला देना है। नहीं, पर इसी प्रकार के लिए हमने क्वेश्चन लगाई थी, ऐसा नहीं है। तिरिख गति आदि लिया ना नियमा अनंत गुण अधिक एवं मनुष्य मनुष्याणु ये किसके लिए पंचेंद्रिय के लिए लिया कि मनुष्य मनुष्य गति के लिए लिया पर इसी प्रकार शब्द क्यों डाला क्योंकि इसी प्रकार अगर लेने तो पंचेंद्रिय जाति के समान इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है यानी मनुष्य गति का भंग है वो पंचेंद्रिय जाति के साथ लगाना है ना ऐसा मुझे कहना ये पंचेंद्रिय जाति का जघन्य करने वाला जीव मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी कदाचित बांधता है ऐसा ना ऊपर क्या बताया है नियम से तिरंज गति आदि का नियम से बंद करता है बताया पर तीरंज गति बांधता है तो ऊपर के देव तो इसको भी बांधेंगे ना पर उनका संकलेश इतना नहीं होगा ये इसकी बात हम कल सोचेंगे वो सर्व संकलेश हो गए तो भी सासाधन वाला संकलेश वहां नहीं होगा वो मनुष्य गति वहां से फिर पड़ेंगे हाँ वो सासाधन से ही ले लेंगे शुरुआत से नहीं तो हम रिपीट कर ही देते हैं ना ऊपर सासाधन से वहां से दोबारा ले लेते वहां डालो नंबर चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।